विषय वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण में आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत कई होते हैं, जिनमें चिट्ठी, आत्मकथा, डायरी, किताब, जर्नल, पाठ्यक्रम, कोटि का निर्णय, तस्वीर, फिल्म, कार्टून आदि प्रमुख है। यह शोधकर्ता की जवाबदेही होती है कि वह इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को विश्वसनीयता की परख करे और तब उसका उपयोग करे। विषय वस्तु विश्लेषण के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, वर्तमान हालातों एवं प्रचलनों का वर्णन करना तथा उसकी व्याख्या करना। दो, लेखक के प्रमुख संप्रत्ययों, विश्वास, चिंतन एवं लेखन शैली का पता लगाना। तीन, किसी घटना या प्रतिफल से संबंधित संभावित कारकों की पहचान करना तथा उसकी व्याख्या करना। चार, छात्रों के कार्यों में विभिन्न तरह की त्रुटियों का विश्लेषण करना। पाँच, पाठ्य पुस्तकों या अन्य समान पुस्तकों की प्रस्तुति की कठिनाई स्तर की पहचान करना। छः, उन विभिन्न संकेतों के प्रयोग का विश्लेषण करना जिनसे विभिन्न संस्थानों, देशों या अन्य विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। सात, कई विषयों या समस्याओं के तुलनात्मक महत्व का पता लगाना। आठ, किसी पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति से संबंधित प्रचार एवं पूर्वाग्रह का मूल्यांकन करना। स्पष्ट हुआ कि विषय वस्तु विश्लेषण के कई सार्थक उद्देश्य हैं। विषय वस्तु विश्लेषण की विधि, मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस। विषय वस्तु विश्लेषण की कई विधियां हैं। इन विधियों में भिन्नता होने के बावजूद भी इनके कुछ सामान्य पहलू हैं जिन पर विचार करना अति आवश्यक है। पहलुओं को मूलतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नांकित हैं। एक, समष्टि को परिभाषित करना तथा उसका विभक्तिकरण करना। विषय वस्तु विश्लेषण में सबसे पहला कदम समष्टि को ठीक ढंग से परिभाषित करना है तथा उसका उपयुक्त विभक्तिकरण करना होता है। जिस विषय वस्तु का विश्लेषण करना है, उसे स्पष्ट शब्दों में विश्लेषणकर्ता को परिभाषित करना होता है और उसे पुनः छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है। इस ढंग का विभक्तिकरण को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके आधार पर जाँच किए जा रहे प्रकल्पना या सिद्धांतों की झलक मिलती है। उदाहरणार्थ, यदि विश्लेषणकर्ता कक्षा अनुशासन पर शिक्षक द्वारा दिखलाई गई शक्ति के पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, तो इस अध्ययन में आश्रित चर वर्ग अनुशासन है और साथ ही साथ इस चर और साथ ही साथ इस समष्टि से संबंधित विभिन्न तरह की प्रकल्पनाओं की जांच के लिए यह आवश्यक होगा कि इसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांट दिया जाए। जैसे वर्ग अनुशासन को चार महत्वपूर्ण श्रेणियों में इस प्रकार बांटा जा सकता है, समय निष्ठता, ध्यान, पाठ बनाना तथा साथियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार में कमी। समष्टि को इस ढंग से बांट देने से उनके बारे में प्रकल्पना बनाना आसान हो जाता है तथा साथ ही साथ उसकी जांच करना भी संभव हो जाता है। जैसे एक प्रकल्पना बनाई जा सकती है, अगर शिक्षक शक्ति से पेश आएंगे तो विद्यार्थी समय पर वर्ग में आएंगे, ध्यान देकर वर्ग में सुनना, गृह पाठ बनाकर लाएंगे तथा अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। पैराग्राफ चेंज। दो, विश्लेषण की इकाई। विषय वस्तु विश्लेषण में एक प्रमुख कदम इकाई के रूप में विश्लेषण करना होता है। सच पूछा जाए तो इन इकाइयों का संबंध सामग्री के संरचनात्मक पक्ष से होता है। इकाई से तात्पर्य सामग्री का एक विशिष्ट संरचनात्मक अंश या भाग से होता है, जिसे एक पद या एकांश समझ कर किसी श्रेणी के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। वेरल्सन 1954 जैसे प्रमुख वस्तु विश्लेषण के विशेषज्ञ ने ऐसी इकाइयों को पांच भागों में बांटा है। शब्द, विषय, एकांश, स्वलक्षण तथा दिक्काल मापदंड, इनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। एक, शब्द। शब्द विश्लेषण का यह सबसे छोटा इकाई होता है, हालांकि कभी कभी शब्द से छोटा इकाई का भी प्रयोग विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगर कोई शोधकर्ता मान लिया जाए कि छात्रों की समझ शक्ति तथा शब्दों के स्वरूप के बीच संबंध जानना चाहता है, तो वह शब्द को विश्लेषण का इकाई मानकर शब्दों को तीन भागों में बांट सकता है, आसान, साधारण एवं कठिन। शोधकर्ता अपनी सूची के प्रत्येक शब्द को तीन भागों में बांटकर तथा बाद में उन्हें छात्रों को देकर छात्रों की समझ शक्ति का अध्ययन कर सकता है। पैराग्राफ चेंज। दो, विषय। विश्लेषण का दूसरा प्रमुख इकाई विषय है, जो प्राय एक वाक्य या एक प्रस्ताव के रूप में होता है। प्रायः सामान्य विषयों को एक सेट या समुच्चय में बदल दिया जाता है। अधिकतर शोधकर्ता यह मानते हैं कि विषय विश्लेषण का एक कठिन एवं जटिल इकाई है और इसलिए जहाँ तक संभव हो इस इकाई का प्रयोग विश्लेषण के लिए न किया जाए तो अच्छा है। विषय का एक उदाहरण इस प्रकार है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता आत्म प्रकृतिकरण के शील गुण को मापना चाहता है। इसके लिए विषय में उन सभी वाक्यों को रखा जाएगा जिनमें व्यक्ति, मैं, हम, हमारा, मेरा, अपना आदि का प्रयोग किया हो। पैराग्राफ चेंज 3। एकांश। एकांश को विषय वस्तु विश्लेषण का एक प्रमुख हिस्सा माना गया है। किसी दिए हुए उद्दीपन के प्रति प्रयोज्य द्वारा किया गया संपूर्ण अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को एक ही एकांश कहा जाता है। जैसे प्रयोज्य द्वारा किसी चित्र को देखकर एक कहानी लिखना एकांश का उदाहरण होगा, उसी तरह लघु आत्मकथा, लघु रेडियो प्रोग्राम या लघु टेलीविजन प्रोग्राम को विश्लेषण के एकांश के रूप में लिया जा सकता है। 4. स्वलक्षण। व्यवहारात्मक शोध में इसका प्रयोग कम और साहित्य के क्षेत्र में किए गए शोधों में इसका प्रयोग अधिक होता है। स्वलक्षण से तात्पर्य साहित्यिक रचना में किसी व्यक्ति या पात्र से होता है तथा इस इकाई का प्रयोग लघु कहानियों के विश्लेषण में किया जाता है। 5. दिक्काल मापदंड। इस इकाई का भी प्रयोग मनोविज्ञान एवं शिक्षा के शोधों में न के बराबर होता है। यह वह इकाई होती है जिनमें वस्तु का भौतिक माप किया जाता है, जैसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी को इंच की संख्या में व्यक्त करना, पेज की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, विचार विमर्श का समय आदि दिक्काल मापदंड के उदाहरण हैं। विश्लेषण के इस इकाई का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों के शोधों में अधिक होता है। पैराग्राफ चेंज 3। परिमाणन क्वांटिफिकेशन। विषय वस्तु विश्लेषण का तीसरा प्रमुख पहलू परिमाणन है। परिमाणन से तात्पर्य विषय वस्तु विश्लेषण के वस्तुओं को अंक दिए जाने की प्रक्रिया से होता है। जैसे किसी लेख के विश्लेषण के बाद कहा जाता है कि इसमें 5 पेज तथा 8 पैराग्राफ हैं, तो यह परिमाणन का उदाहरण होगा। सामान्यतः परिमाणन 3 प्रकार से किया जाता है, संज्ञात्मक मापन, क्रमिक मापन तथा रेटिंग मापन। संज्ञात्मक मापन में वस्तुओं को श्रेणियों में बांट देने के बाद उसकी गिनती की जाती है। जैसे किसी लेख को 2 श्रेणियों में, जैसे छोटा पैराग्राफ तथा बड़ा पैराग्राफ में बांटकर फिर यदि गिनती कर यह कहा जाता है कि इस लेख में छोटे पैराग्राफ की संख्या 3 तथा बड़े पैराग्राफ की संख्या 5 है, तो यह संज्ञात्मक मापन का उदाहरण होगा। क्रमिक मापन में कोई निश्चित कसौटी के अनुसार वस्तुओं को कोटिबद्ध किया जाता है। जैसे यदि प्रयोज्य कई मानव चित्रों को दिखलाए जाने वाले समय की तीव्रता के अनुकूल कोटिबद्ध करता है, तो यह क्रमिक मापन का उदाहरण होगा। रेटिंग मापन में संपूर्ण रचना को कई विमाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे एक पालक द्वारा लिखे गए लेख को मौलिकता, धारा, प्रवाहिता, हिज संगठन आदि जैसे विमाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। फेरेल्सन 1954 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिमाणन को उचित ठहराने के लिए कुछ बातों से संतुष्ट होना अनिवार्य है। इन बातों में निम्नांकित 2 प्रमुख हैं। 1. विश्लेषण किए जाने वाले वस्तु या सामग्री तब प्रतिनिधिक हो तो उन्हें सावधानीपूर्वक गिनना या कोटिबद्ध करना या रेटिंग करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज 3। बेरेल्सन के अनुसार इन दोनों तथ्यों की संतुष्टि हो जाने पर परिमाणन से प्राप्त तथ्य का सामान्यीकरण सही सही ढंग से एवं यथार्थ तरीकों से किया जाना संभव हो पाता है। पैराग्राफ चेंज। विषय वस्तु विश्लेषण का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। विषय वस्तु विश्लेषण के कुछ लाभ एवं परिसीमाएँ हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. विषय वस्तु विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग विभिन्न तरह की सामग्रियों के अध्ययन में की आसानी से किया जा सकता है। अतः इस विधि का कार्य क्षेत्र बड़ा है, जो शोधकर्ताओं के लिए एक तरह का देन है। पैराग्राफ चेंज 2। विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग उस परिस्थिति में भी किया जा सकता है जब शोधकर्ता आश्रित चर पर किसी प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। जैसे शोधकर्ता हस्तलेखन पर अभ्यास के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, तो वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग कर वह यह अध्ययन कर सकता है कि हस्तलेखन के गुण में अभ्यास की कितनी उन्नति हुई है। 3, विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग उस परिस्थिति में भी सुविधाजनक ढंग से किया जाता है जब प्रयोगकर्ता प्रेक्षण की अन्य विधियों से प्राप्त आंकड़ों की वैधता ज्ञात करना चाहते हैं। पैराग्राफ चेंज। 4, सामाजिक संस्कृति के क्रमिक विकास का अध्ययन। विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा शोधकर्ता आसानी से किसी समाज के संस्कृति में होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तन या विकास का अध्ययन कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज, माफ कीजिए, समाज की संस्कृति की विकास अवधि को कुछ भागों में बांटकर प्रत्येक भाग में होने वाले परिवर्तनों का अलग अलग अध्ययन इस विधि द्वारा संभव है। पैराग्राफ चेंज। 5, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। यदि शोधकर्ता विभिन्न समाज या देशों की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि की उपयोगिता बढ़ जाती है। विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों की आदतों, परंपराओं, संवेगों, भावों, प्रचलित प्रथाओं की विषय वस्तु का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। विषय वस्तु विश्लेषण की कुछ परिसीमाएँ बतलाई गई हैं जो निम्नांकित हैं। 1, कुछ शोधकर्ताओं जैसे टेटालॉग 1973 का मत है कि विषय वस्तु विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं तथा किसी प्रकार निष्कर्ष पर विभिन्न शोधकर्ताओं में भी सहमति नहीं होती है, अतः यह विधि अधिक भरोसेमंद नहीं है। पैराग्राफ चेंज। 2, विषय वस्तु विश्लेषण में सामान्यीकरण की समस्या होती है। टेटलॉग का मत है कि चूंकि इस विधि में परिमाणन अधिक दुरुस्त एवं यथातथ्य नहीं होता, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण सही ढंग संभव नहीं है। पैराग्राफ चेंज। 3, इस विधि में शोधकर्ता का अपना पूर्वाग्रह, विश्वास तथा स्थिराकृति आदि का विषय वस्तु विश्लेषण करते समय काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे इसमें आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो जाती है। 4, इस विधि का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों के विचारों या जिन विषयों का आलेख, दस्तावेज आदि किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, उनका विषय वस्तु विश्लेषण किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 5, इस विधि द्वारा अध्ययन करने में सामान्यतः समय एवं श्रम दोनों ही काफ़ी लगते हैं, क्योंकि शोधकर्ता को अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित दस्तावेज एवं आलेख को उपलब्ध करने और उनमें से संगत दस्तावेज का चयन करने और तब उनका विश्लेषण करने में स्वभावतः समय अधिक लगता है। पैराग्राफ चेंज। इन परिसीमाओं के बावजूद विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक शोधों में अधिक होता पाया गया है, क्योंकि इसमें सरलता एवं सुगमता का गुण है।